उसके बाद आगे चलते हैं तो 174-175 का थीम क्या है? कुराने करीम हसूल रहमत का जरिया है। या यूहन्नास, दोबारा इस पुकार को दिल पे लीजिए, या यूहन्नास, ए लोगो, आप इस कनेक्शन को फील किया करें। आप देखिए कि पहले दौर में लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आती थी ना, तो घबराहट शुरू हो जाती थी, जल्दी करो, दूर से कॉल आई है, 3 मिनट हैं, 6 मिनट हैं, घबराहट में बात भी नहीं थी याद रहती, बाद में लोग कहते थे ये भी कहना था वो भी कहना। अब ये तो आज है ना, हर वक्त फ्री कॉल्स हैं चारों तरफ, और मज़े की बात है कि हम फिर भी अपनों को नहीं करते, जिनको करना होता है उनको ही करते हैं, जिनसे बातें चलती हैं उन्हीं से चलती हैं, जिनसे दिल मिले हुए, कब आखिरी बार अपनी खाला को फ़ोन किया, फूफो से रब्ता किया, अपने मामू का हाल पूछा, चचा का हाल पूछा। यानी जितने दुनियावी आलात ज़्यादा होते जा रहे हैं और फ्री हो रहे हैं, हम उतने ही बेगरज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदारों से अपनों को तोड़ के दूसरों से जुड़ने की कोशिश है, तो क्या पता चला अल्लाह से भी जुड़ना है और बंदों से भी जुड़ना है। खैर से, तो यहाँ सूरत निसा का ततीमा क्या है कि तुम क्या करो, हमने जो किताब तुम्हारी तरफ उतारी, कज्जाकुम बुरहानो में रब्बी कुम, ये अल्लाह की तरफ से एक बुरहान थी और हमने नाजिल किया तुम पे नूरे मुबीन, फमल्लजीना मनु बिल्ला, वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए, वा तसमू बिही, और मजबूती से थाम ले उसको। ये बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, आपने आयतुल कुर्सी के एंड पे भी पढ़ा और यहाँ भी है, और कुरान में कई जगह चिपक जाना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है ना, आप छोटे से बच्चे को जरा सा ऊपर उछाले ना तो वो जोर से अपने हाथ पकड़ लेगा। एहतिसाम बिल्ला क्या होता है कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। देखिए, इंसान अपनी तबीयत के एतबार से ना कमज़ोर है और उसको एक खारजी सहारे की ज़रूरत होती है। मैं इसकी मिसाल अक्सर बेल और दरख्त से देती हूँ। बेलें देखी होंगी, उगी भी कितनी कमज़ोर होती हैं, ज़मीन पे बिछी हो तो हो सकता है ऊपर से लोग गुजर जाएं और वो ख़त्म हो जाएं, एक छोटी सी डंठल उसकी काट दी जाए तो वीरान हो जाएं, लेकिन उसी बेल का एक सिरा उठाकर आप जब दरख्त के साथ बांध देते हैं तो वो कैसे ऊपर जाती है, बल्कि पूरी बेल एक छत बन जाती है, अंगूरों के खोशे लटकते हैं। इंसान अपने वजूद के एतबार से बेल से भी कमज़ोर है। या युन्नासु अंतुमुल फुकरा व खुलिकल इंसानु दईफा, कुरान में अल्लाह ने कहा हमने इंसान को बड़ा कमज़ोर पैदा किया, लेकिन जब अल्लाह से उसका ताल्लुक जुड़ता है वो बड़ा मजबूत हो जाता है। अल्लाह के नबी के सहाबा इसीलिए बड़े करजियस थे कि वो उन्होंने अल्लाह का सहारा पकड़ा हुआ था। तो आज भी अगर आप डाउन फील करते हैं, आज भी आपको लोनलीनेस फील होती है, आप अकेला महसूस करते हैं, तो वह तस्सीमू भी अल्लाह की रस्सी को थाम लीजिए, ये कुरान भी तो अल्लाह की रस्सी। अब आप कहेंगे अब अल्लाह को कैसे थामें, प्रैक्टिकली हम क्या करें, कुरान को थाम लीजिए और इसको अल्लाह के नबी की अहादीस की रोशनी में देख लीजिए, फसयुदखिलुहुम फी रहमतिन मिन्हु, फिर वो उनको अपनी रहमत में भी दाखिल करेगा और फजल भी अता करेगा, और साथ ही साथ वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तकीम, उनको अपनी तरफ सीधा रास्ता दिखाएगा। यहाँ दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ इसीलिए सिखाई जाती है। और फिर इसके बाद आगे आयत 176 जो कि सूरत की आखिरी आयत है, एक कलाला के बारे में। आपको यहाँ सूरत निसा का शुरू का हिस्सा याद आ रहा होगा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, आयत 14 में विरासत के अहकाम पे बात शुरू हुई थी, सूरत के एंड पे दोबारा कलाला की बात है। और कलाला कौन होता है, ला वलद वला वालिद, किसी इंसान की ना तो अपनी डायरेक्ट औलाद है यानी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो पोता और नवासा भी नहीं है, और इसी तरह पीछे से देखें तो बाप नहीं है दादा नहीं है। इस सूरत में फिर इंसान का विरसा उसके भाई बहनों को मिलता है, यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि भाई बहनों को हिस्सा मिलने की बस एक ही सूरत है कि मरने वाले का अपना बेटा या उसका माँ बाप ना हो या बाप ना हो। डिटेल्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, क्या पता चला कि अल्लाह का दीन कितना खूबसूरत है, हर हक वाले को उसका हक दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन सारी चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पे हमने कुरान पाक की एक और खूबसूरत सूरत पूरी की और अब आगे हम एक और खूबसूरत सूरत शुरू करते हैं, सूरत माईदा। तरतीब के साथ जो सूरतें चल रही हैं सारी की सारी मदनी सूरतें हैं, सूरत फातिहा को छोड़ दीजिए तो वो मक्खी भी है और मदनी भी है, और तवील सूरतें हैं। इस बारे में हम इसकी 82 आयतें पढ़ेंगे, अगला पारा फिर इसी से शुरू होगा। मायदा किसको कहते हैं, टेबल क्लॉथ, खुआन, दस्तरखान। इस सूरत के बिल्कुल एंड पे नसारा के एक मुतालबे का तस्करा है जो उन्होंने हज़रत ईसा से किया था कि भाई बनी इसराइल पे तो मनोसलवा उतरा था, तो ज़रा हमें भी तो कुछ दीजिए। तो वो उतरा कि नहीं उतरा, लेकिन उस नाम पर यहाँ मौजूद है। और सूरत मायदा में खाने पीने की बहुत बातें हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बहुत आता है, अहकामात बहुत हैं। और इसके बारे में हज़रत आयशा का एक कौल मिलता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर की सूरतों में से, इसलिए इसके हलाल को हलाल समझो, हराम को हराम, क्योंकि इसकी कोई आयत मनसूख नहीं है। और बहुत ही प्रोफाउंड किस्म की सूरत है, और ख़ास तौर पे इसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू बहुत दफ़ा है, और पूरी इस्लामी शरीयत की आप कह लीजिए कि एक छोटी सी तस्वीर सूरत मायदा है। अगर पहली दो आयात को देखें तो इसका टॉपिक है अहकाम शरीयत और तकमील शरीयत, पीछे से जो दीन चल रहा था वो कैसे आगे बढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल उकूद, पहले जुमला देखिए, ए ईमान वालो वादों को पूरा करो, अहदों की पासदारी करो। क्या पता चला कि मोमिन की ज़िंदगी एक पाबंद ज़िंदगी होती है, मोमिन शुतर बेमुहार नहीं होता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर जो अहद करता है अल्लाह से उसको निभाता। बीवी के साथ कबूल है, कबूल है कि दावे के साथ जो इकरार करता है वो सारी ज़िंदगी निभाता है। बीवी शौहर की तरफ से निकाह के उस पैगाम को कबूल करती है तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक वो एक अच्छी बीवी बनना चाहती है। इंसानों के साथ इंसानों के पैक्ट्स हैं, आप कहीं जॉब के लिए को साइन करते हैं, आप किसी दीन के काम में वॉलंटियर फॉर्म को अपने लिए कमिटमेंट के दर्जे पे लेते हैं तो फिर इसको पूरा करना है। मोमिन सारा वक्त इसी पलड़े में होता है। तो इसमें आपको मुझे जो पैगाम दिया जा रहा है कि अल्लाह के साथ के माहदे को भी पूरा करो, और अल्लाह के नाम से जो बंदों के साथ तुम्हारे माहदे हुए हैं इनको भी पूरा करो। मोमिन ताल्लुक बिल्ला और ताल्लुक बिन्नास में बहुत सेंसिटिव होता है। फिर इसमें एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम है, वताअवनु अलल बिर्री वत्तक्वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ तआवुन करो। वला तआवनु अलल इस्मी वल उदवान, नाफरमानी और गुनाह के कामों में तुम तआवुन ना करो। यहाँ जो लफ्ज़ है ना बिर, बिर किसको कहते हैं, पीछे आपने पढ़ा लैसल बिर्रा, आयत 177 सूरत बकरा। फिर चौथे पारे के शुरू में क्या आया था, लन तनालुल बिर्रा सूरह आल इमरान में, यहाँ क्या आ गया बिर। तो बिर क्या है, ईमान, अकायद, मामलात, इबादात और अखलाकियात का मजमुआ। याद रखिए कि दीन दो तरह से मुकम्मल होता है, अच्छे काम करके नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करके, और बुरे काम छोड़कर गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करके। यानी ये दो जुमले लिख लें, अच्छे काम करेंगे और दूसरों को उसकी दावत देंगे तो आपका आधा दीन मुकम्मल हो जाएगा, और इसके बाद बुरे कामों से रोकेंगे, खुद भी नहीं करना दूसरों को नहीं करना, तो दीन पूरा हो जाएगा। अब आप ज़रा सा इसको लाइए जहन में, यहाँ एक जुमला नोट कीजिएगा, 100 अच्छे काम करवाना आसान है। मसलन आप लोगों से कहते हैं ये वजीफ़ा कर लो, ये दुआ याद कर लो, नमाज पढ़नी चाहिए, अच्छा ज़रा तुम ये कर लो, लोग कहेंगे जी ठीक है ठीक है ठीक है। हर बंदा नेकी के जुमले को पसंद ज़रूर करता है, वो करे ना करे खुशी से करेंगे। आप कहते सदका देना चाहिए, उमरा करना चाहिए, हज करना है, जी जी, जहाँ आप एक बुरे काम से रोकेंगे ना वहाँ रिजेंटमेंट होगी, वहाँ घबराहट होगी। किसी का सिगरेट छुड़ाना हो, किसी के शराब के नशे को छुड़ाना हो, किसी के माली मामलात को छुड़वाना हो, आदात में खराबी हो, इस पे लोग गुस्सा करते हैं। आज हम जिस नहज पे खड़े हैं ना, यानी वी आर स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट कि आज हम अच्छे कामों की दावत बहुत देते हैं लेकिन बुरे कामों से रोकते नहीं हैं। इसकी मिसाल अभी रमज़ान में देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितने खाने बट रहे, कितनी इफ्तारियाँ, कितनी सहरियाँ, उम्रे पे जाने वालों की लाइनें देखिए, ज़रा हरम का मंजर तो देखिए, हज जितना तो रश है, अच्छे काम कर रहे हैं। 2-2 लाख करोड़ लगाकर पूरे पूरे ख़ानदानों को हम उम्रा करवाने और करके जाने पे तैयार हैं, लेकिन जब आपको अपने ही घर के किसी मामले में एक बुरी रस्म से रोका जाए, आप अपने बच्चों की शादियों में किसी खिलाफ सुन्नत काम से रोका जाए तो आप क्या करते हैं? हाँ, हम एक और उम्रा कर लेंगे, अल्लाह माफ़ कर देगा। सारी दुश्मनियाँ इसी पे पड़ती हैं। अल्लाह के नबी अगर मक्का में ये पैगाम देते ना कि लोगों ये कुरान पढ़ो, इससे तुम्हारे मुर्दे बख्शे जाएंगे, तुम्हारे घरों में बरकत आएगी, यकीन करे मक्का वाले तो आपके सामने पानी की बोतलें रख देते कि ज़रा इसमें फूके मार दो और बरकत दे दो। सारी दुश्मनी मक्का वालों की जो 13 साल नबी सल्लम की हुई थी वो क्या थी? वला ताबन वलल इस्मी वलुद्वान। ख़ानदान टूटे, आप पे इल्ज़ाम लगे, आपको मक्का से निकाला गया, अपने आपके सामने आगे मैदान जंगों में बाद में, तो आज आप और मैं अपने साथ एक वादा करें, जिस अल्लाह की रज़ा के लिए अच्छे काम करते और दूसरों को उसकी दावत देते हैं ना, उसी रब की इस रज़ा के लिए बुरे कामों से खुद भी रुकना है और दूसरों को रोकना है। इस वक्त उम्मत में जो ये बेबरकती है ना, उसकी वजह शायद ये है कि हम गुनाह के कामों पर तावुन नहीं छोड़ते। हम कभी किसी के साथ किसी रस्म में या उसकी किसी तैयारियों में मदद करते हुए नहीं सोचते कि इस काम के बाद गुनाह होगा कि सवाब। ये काम, ये कपड़ा, ये जूता, ये जेवर पहन कर कोई बेपर्दगी करेगा या क्या होगा? कोई इस जगह पे हमारी दावत पे हमारे कार्ड के ऊपर आ जाएगा तो वहाँ जाकर वो उसके लिए नेकी के मौके होंगे या गुनाह के? तो हमेशा अल्लाह से खैर मांगिए। फिर इसके बाद एक और बात पता चलती है कि इज्तमाही तौर पर जब बंदा नेकियां करता है ना, उसमें बरकत बहुत होती है। जामे तिरमिजी की एक रिवायत है 2671 कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने भलाई का रास्ता दिखाया तो इसे इतना ही अजर मिलता है जितना इसके करने वाले को मिलता है। अल्लाह के पास कमी नहीं। यानी अगर आप ये बात इस वक्त सुन रहे हैं, हो सकता है आपको किसी ने बुलाया हो, किसी ने आपको लिंक दिया हो, किसी ने आपको नूरुल कुरान टीवी का चैनल दिया हो, किसी ने आपको इस प्रोग्राम का टाइम बताया हो, किसी ने आपको कुछ किया, आपको नहीं पता, लेकिन आपका ये सारा सुनना, ये सारा अमल उसके भी अकाउंट में जा रहा है ना मोमिन के लिए खुशी की बात। तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी तड़पना। और आगे फिर आयत 3, दीन इस्लाम की तकमील का ऐलान है। हुर्रिमत अलैकुमुल से बात शुरू होती है। पहली बात आप देखिए कि इसमें शरीयत के 4 अहकाम आता है। चूँकि पीछे नेकियों की बात हुई और बुराइयों से रुकना था ना, तो पूरी शरीयत में जो चीज़ें हराम है ना, वो सिर्फ 4 हैं, बाकी सब कुछ हलाल है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता पहली चीज़, व दम दूसरी, व लहमुल खिंजीर और वमा उखिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। बस ये 4 शजरे ममनुआ हैं इस दुनिया में, जैसे कि आदम के लिए जन्नत में एक दरख्त का फल खाना मना था। फिर इसी की डिटेल है, मैता की डिटेल में, अलमुनहनिकतु वलमौकूज़तु वमुतरद्दिया वलमुतरद्दिया वन्नतीहा वमा कलस्सबू। यानी ये वो 5 किस्में जिसकी वजह से जानवर खुद बखुद मर जाता है। हाँ, मगर इल्ला मा ज़क्कई तुम। तो हलाल हराम का ताल्लुक गोश्त से मुतलिक चीज़ें, क्या चीज़ें? खून, खिंजीर का गोश्त, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर नजर किया गया खाना हराम है। इस तरह झटके या करंट से मरा हुआ जानवर खून न बहने की वजह से जिसको ऐसे ही काट लिया जाए वो भी हराम है। फिर ज़िबा किए बगैर मर जाने वाले जानवर का गोश्त हराम है। फिर तीसरी बात है, किसी भी आस्ताने पर किसी इंसान की रजा के लिए ज़िबा किया हुआ जानवर, उसका खाना पीना। फिर जुए के तीरों के ज़रिए तकसीम शुदा गोश्त भी हराम है। अरब लोग ऐसे ही करते थे, अपने बुतों के नाम पे जानवर ज़िबा करके उसको जाके गरीबों में बांट देते थे। हाँ, इसमें एक्सेप्शन क्या दे दी? जान जाने का ख़तरा हो तो ज़रूरत के तहत सिर्फ इतना कि जिससे आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आपको हलाल मिले। ये है दीन इस्लाम का खूबसूरत मिजाज। और ये सारी पाबंदियां क्यों लगाएं? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम हलाल खाएं। आप देखिए, खाने का असर होता है जिस्म में, खून जो होता है ये बीमारियों का कैरियर होता है। सारा जिस्म जो सारा दिन मेटाबॉलिज्म के जरिए शिकस्त और रिक्त का शिकार होता है, आप इसको समझ लें तो शायद फिर कभी भी इस चीज़ को पसंद ना करें कि जैसे गटर की पाइपों में सारी गंदगी बह रही होती है ना, तो जानवर के खून में जिस्म की गंदगी होती है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये इशू नहीं है। फिर भी जहाँ लेते हैं गोश्त, चेक किया करें कि ज़बीहा ठीक हो रहा है। लेकिन ये मसला बाहर की दुनिया का है, वहाँ उनको ये चीज़ समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम पाकीज़ा चीज़ें खाओ, आयत नंबर 4 से 5 में। पाकीज़ा चीज़ों के हलाल होने की बात है या सलून का माजा ओ हिल्ला लहुम, वो आपसे सवाल करते हैं कि क्या हलाल है उनके लिए। इन सारी खाने पीने की चीज़ों में अब गैर मुस्लिम औरत से निकाह की बात है। यहाँ इतनी डिटेल से हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन ज़रा सा समझने की कोशिश करते हैं। आयत के अंदर एक टुकड़ा है, हिल्लुल्लहुम वल्मुख्सनात मिनल्मोमिनात वल्मुख्सनात मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब, यानी अहले किताब की औरतों में से शर्त क्या है कि अगर वो मोमिना है, वो अपने दीन के मुताबिक असल अकायद पे मौजूद है, और दूसरी बात ये है शरायत कुछ हैं। नंबर एक, जैसे मुसलमान औरत से निकाह के लिए मेहर होगा, इसका भी होगा। निकाह घर बसाने के लिए यानी हिफाजत निकाह में लाना है, सिर्फ वक्त गुजारी नहीं, पेपर मैरिज नहीं, टाइम बाउंड मैरिज नहीं है, फिर वो निकाह छुपा हुआ नहीं होगा, उसका ऐलान होगा। और जिना ना करने वाले, यानी वही शरायत जो एक मुसलमान औरत से शादी के वक्त रखी जाएंगी, वही एक गैर मुस्लिम औरत के साथ शादी की रखी जाएंगी, तो फिर वो निकाह जायज़ है। अब यहाँ चंद जुमले बोलने की इजाज़त चाहती हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब ये देखा गया कि मुसलमान मर्द किताबी औरतों से निकाह करते जा रहे हैं और अपनी मुसलमान औरतें पीछे रह गई, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी। क्यों? एक तो कहा कि फिर ऐसी औरतें अमूमन हुस्न में जमाल में ज़्यादा होती हैं, तो हमारी मुसलमान औरतों का क्या बनेगा। और जो दूसरा उनका पैगाम था वो क्या था, और वो ये था कि ऐसी औरतें अमूमन अपने साथ बेदीनी लाती हैं, क्योंकि उनके अपने पास दीन नहीं है। अब यहाँ फिर आपके लिए ये कोई इतना इशू नहीं, लेकिन बाहर की दुनिया में अब ये इशू भी नहीं रहा। आप किताबियाँ तो छोड़ दीजिए, आप किसी भी मजूसी से शादी कर लें, एथिया से शादी कर लें, होगा क्या? आप इसको बिल्कुल ठंडे दिल और दिमाग से सोचिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान तो हैं, लेकिन जो उर्दू बोलने वाले हम इंडो पाक कल्चर के लोग हैं ना, हमारे यहाँ ख़ानदानी रिवायात बहुत अहम है। आप तस्वुर मिलाइए कि एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, और लड़का मुसलमान है और लड़की नॉन मुस्लिम है, वो किस दर्जे की उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुशरिक से तो निकाह हो ही नहीं सकता ना, पेगन फायर वर्शिपर आइडल वर्शिपर नहीं हो सकता। वजह क्या है? उसका खुदा कोई और, इसका खुदा कोई और, उसका लाइफस्टाइल कोई और, इसका और। उसने सुबह उठ के अस्सलातु खैरुन मिनन नौम पर जाना है, उसने जाके उठ के भजन बजाने हैं, उसने अल्लाह से मांगना है, इसने जाके कहीं से प्रसाद लेना है। क्या सिर्फ 24 घंटे में शादी के बाद 8-10 ऐसे नुक्ते नहीं आ जाएंगे कि दोनों में क्लैश होगा? इधर तहारत के मसाइल हैं, उधर ऐसा कोई है ही नहीं है, इधर नमाज की पाबंदी है, उधर नहीं। 24 घंटे भी वो कपल साथ नहीं रह सकता अगर वो मर्द इस्लाम पे है, और अगर वो खुद ही इस्लाम पे नहीं है, तो फिर तो आप यही कह सकते हैं कि दो गैर मुस्लिम्स की भी तो शादी हो जाती है। तो अपनी नस्लों को दीन सिखा कर उस पर अमल करवाएंगे और फिर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हाँ, जिसका बेटा खुद या जो मर्द खुद दीन में ईमान में और इल्म में इतना पुख्ता है कि वो अपने कौल फेल अपने किरदार से उस औरत को माइल करे, तो उसको अहले किताब औरत जो इन सारी शरायत पे हो, यानी कि पहले आपस में छुप के दोस्ती हो गई, पहले छुपा के शादी की, कुछ साल तक बाद में बताएंगे, ये नहीं, उसके लिए दूसरी औरत से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। तो अहले किताब औरत से शादी की शरायत, अल्लाह से दुआ करिए कि हमारी नस्लों की हिफाजत करें। आप सोचिए वो बच्चा क्या होगा। हज़रत उमर के पास एक बूढ़ा शख्स एक जवान बेटे को लाया कि ये मेरी बात नहीं मानता, नाफरमान है, इसको समझाएं। बेटे ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपकी मैं हर बात का जवाब दूंगा, पहले आप मेरी एक बात का जवाब मेरे बाप से ले दें कि बेटा होने के नाते मेरे क्या हकूक है। तो जो पहला हक हज़रत उमर ने दिया था उसको क्या, कि ये तेरे लिए एक अच्छी माँ लाता, फिर तेरा अच्छा नाम रखता और तेरी अच्छी तरबियत करता। कहने लगा बस मेरे बाप ने मेरे तीनों ही हक नहीं दिए, इसने एक मजूसी औरत से शादी की, फायर वर्शिपर थी, आग की पूजा करती थी, और चूंकि वो मुसलमान नहीं थी, और इसने मेरा नाम ज्वाला रखा, बेमानी सा नाम है ये जाले और इस तरह के कीड़ों के नामों पे, और मेरी माँ चूंकि मुस्लिम नहीं थी उसने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की। तो हज़रत उमर ने कहा था कि ऐ शख्स इस बेटे को ले जा, कसूर इसका नहीं तेरा। तो यहाँ हम दामन में झांकें, अपने गिरेबानों में झांके, औलादों की नाफरमानियों की बात तो हम करें, कहीं कसूर हमारा अपना ही ना हो, और अल्लाह ताला सब बिगड़े हुओं को हिदायत पे ले आए।